हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अरहम ठाकुर का गुस्से से बुरा हाल हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो फिर हार जाएगा। उसने पूरी कोशिश की थी, अक्रम और रिया पर पूरी नज़र रखी थी, लेकिन इस बार वे दोनों भी उसके हाथ से निकल गए थे। अबीर सिंह राठौर ने अपने प्लान के मुताबिक रातों रात उन्हें वहां से बुला लिया था। ज़ोया अक्रम और रिया से मिलकर बहुत खुश थी। वो अब अपनी बेटी की जिम्मेदारी से बेफिक्र हो चुकी थी। वो जानती थी रिया उसकी बेटी का ख्याल बहुत अच्छे से रखेगी। ज़ोया जल्दी ही बाथरूम से बाहर आई और देखा अबीर सिंह राठौर अभी भी सोया हुआ था। ज़ोया को हैरानी हो रही थी क्योंकि अबीर सुबह जल्दी लगभग 6 बजे उठ जाता था और जॉगिंग करता था। अब 8 बज चुके थे लेकिन अबीर अभी तक नहीं उठा था। हालांकि ज़ोया को अब जल्दी उठने की आदत हो गई थी क्योंकि उसे अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी होती थी। ज़ोया रोज़ सुबह जिम जाती थी, फिर बिजनेस मीटिंग्स हैंडल करती थी। ज़ोया पूरा दिन बिजी रहती थी और बीच बीच में अपनी बेटी से मिलने जाती थी। आज जब ज़ोया जिम पहुंची और वर्कआउट करने लगी, तभी वहां रिया आ गई। रिया ने ज़ोया को वर्कआउट करते देखा तो उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। ज़ोया बड़े बड़े वेटलिफ्टिंग कर रही थी, किसी बॉडी बिल्डर से भी ज़्यादा। रिया ने ज़ोया को वेटलिफ्टिंग करते देखा तो उसकी सांसें फूल गईं और वो हैरानी से ज़ोया को देख रही थी। ज़ोया ने भी रिया को देख लिया और वर्कआउट खत्म करके उसके सामने आ गई। लेकिन रिया हैरानी से बुरा हाल थी। वो ज़ोया को आंखें फाड़ कर देख रही थी। तभी ज़ोया ने अपना हाथ उसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा, हेलो मैडम, क्या हुआ, कहाँ खो गई हो आप? रिया ख्वाब से जागी और बोली, आप इतना भारी वज़न उठा रही थीं, आपको पता है इतना भारी वज़न उठाते हुए मैंने केवल टीवी में ही देखा है, वो भी फाइटर करते हैं। आप इतनी कमज़ोर सी थीं और एकदम से इतना वज़न, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप मुझे पहले वाली ज़ोया दीदी तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रही हो। रिया की बात सुनकर ज़ोया मुस्कुराई और बोली, अरे रिलैक्स, मैं वही हूँ, पर हाँ अब काफ़ी बदल भी चुकी हूँ। सो क्या कर रही हो इतनी सुबह यहाँ? कितनी बार कहा है तुम्हें आराम करना चाहिए, और अब तो तुम पर एक नहीं बल्कि 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, मेरी बेटी की भी, और मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे से निभाओगी। तब रिया ने ज़ोया का हाथ पकड़ते हुए कहा, आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरी बेटी है और आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत कीजिएगा। आप बस अपने मकसद में जल्द कामयाब हो जाइए, उसके बाद हम सब मिलकर खुशी से एक परिवार की तरह रहेंगे। रिया ने अपनी दिल की बात ज़ोया के सामने रख दी थी। ज़ोया मुस्कुराई और उसने खुशी से रिया को गले लगा लिया। फिर रिया ने कहा, आप आ जाइए जल्दी से, आज मैं खुद आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करवाया है। जैसे ही ज़ोया ने ये सुना, वो मुस्कुराई और नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। उसने देखा कि अबीर सिंह राठौर बेड पर नहीं था। ज़ोया ने गहरी सांस ली और बाथरूम में गई। जल्दी ही वो बाथरूम से फ्रेश होकर तैयार हो गई। उसने आज रिया के लाए स्टाइलिश कपड़े पहने थे। ज़ोया बहुत खूबसूरत लग रही थी, मानो कोई बड़ी बिजनेस वूमन आ गई हो। उसने एक वन पीस का कपड़ा पहना था जो उसके घुटनों तक था, एक वेस्टर्न ड्रेस। उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था और आंखों में हल्का सा काजल लगाया था। उसके होंठ कुदरती तौर पर लाल थे, इसलिए उसे लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं थी। ज़ोया की खूबसूरती को मेकअप और नहीं बढ़ा सकता था क्योंकि वो पहले से ही बहुत खूबसूरत थी। वहीं दूसरी ओर अरमान ठाकुर के ऑफिस के बोर्डरूम को पूरी तरह सजाया जा रहा था। साफ़ सफाई की जा रही थी क्योंकि जो मीटिंग होनी थी वो अरमान ठाकुर के ऑफिस में ही होनी थी। तभी राजवीर ने अरमान ठाकुर को फ़ोन किया और बोला, अरमान ठाकुर, मैंने सुना है कि तुम पूरे ऑफिस की साज सज्जा का बहुत ध्यान रख रहे हो। याद रहे, राजवीर सिंघानिया भी आ रहा है और मुझे बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है, राजवीर ने जानबूझकर अरमान को छेड़ते हुए कहा। राजवीर सिंघानिया की बात सुनकर अरमान हल्के से हंसा और बोला, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे खास मेहमान हो और अरमान ठाकुर तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छे से रखेगा। अरमान ने फ़ोन रख दिया। वहीं मेहर ने सोच लिया था कि वो हर हाल में इस प्रोजेक्ट को अपनी कंपनी के लिए हासिल करके रहेगी और आने वाले विदेशी सीईओ को अपने लटके झटके से इम्प्रेस करेगी, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े।